लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा पर संत पापा फ्रांसिस का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Lunedì scorso sono rientrato dalla Mongolia.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। मैं सोमवार को मंगोलिया से वापस लौटकर आया। उन्होंने मंगोलिया के राजनयिकों, भूतपूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति, जिन्होंने इस प्रेरितिक यात्रा हेतु उन्हें आधिकारिक निमंत्रण दिया था, अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। साथ ही उन्होंने उन सबों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस यात्रा की सफलता हेतु उनके लिए प्रार्थना अर्पित की। संत पापा ने कहा कि मैं आनंद भरे हृदय से मंगोलिया के स्थानीय कलीसिया और मंगोलियाई लोगों की याद करता हूँ, जो अपने में नेक और विवेकी हैं, जिन्होंने मुझे अपार उत्साह में अपना स्नेह दिखलाया। मैं आप सबों को इस प्रेरितिक यात्रा के केंद्र बिंदु में ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई यह पूछ सकता है कि क्यों संत पापा इतनी दूर एक छोटी विश्वासी कलीसिया के पास गए।
Perché proprio lì, lontano dai riflettori che spesso si trovano i segni della presenza di Dio.
क्योंकि हम विशेष रूप से वहाँ, जो सुर्खियों से दूर हैं, ईश्वरीय उपस्थिति के निशानियों को पाते हैं, जो हमारे शारीरिक रूपों को नहीं बल्कि हृदय को देखते हैं। ईश्वर मुख्य मंच को नहीं देखते, लेकिन उन साधारण लोगों के हृदय को देखते हैं, जो उनकी चाह रखते और दूसरों पर हावी हुए बिना उन्हें प्रेम करते हैं। और मुझे मंगोलिया में एक नम्रता लेकिन एक आनंदमयी कलीसिया से मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो ईश्वर के हृदय में निवास करता है। संत पापा ने कहा कि मैं उनकी खुशी का साक्ष्य दे सकता हूँ, जिसे उन्होंने कुछ दिनों कलीसिया के केंद्र में रहने के अनुरूप अनुभव किया। उस समुदाय का इतिहास अपने में वशीभूत करने वाला है। इसकी शुरुआत प्रेरितिक उत्साह के अनुरूप ईश्वर की कृपा में हुई, जिनके बारे में हम इन दिनों चिंतन कर रहे हैं। कुछ प्रेरित जो सुसमाचार के उत्साह से पूर्ण 30 वर्षों तक उस देश का भ्रमण किया जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने वहाँ की भाषा सीखी जो सहज नहीं है। वे विभिन्न देशों से थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने को एक सच्चे ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में संयुक्त किया। वास्तव में, संत पापा ने कहा, ख्रिस्तीय होने का अर्थ यही है, ख्रिस्तीयता अर्थात सार्वभौमिकता। लेकिन यह वह सार्वभौमिकता नहीं है जो एक रूपता लाती है, बल्कि वह सार्वभौमिकता है जो संस्कारित करती है।
Questa è la cattolicità, un'universalità incarnata, inculturata, che coglie il bene lì dove vive e serve la gente con cui vive.
यह ख्रिस्तीयता है जिसमें हम एक सन्निहित सार्वभौमिकता को पाते हैं। यह अच्छाई का आलिंगन करती और अपने संग रहने वालों की सेवा करती है। कलीसिया का जीवन इसी प्रकार का है, जहां वह ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य नम्रता में अपने शब्दों के बदले कार्य में देती है। वह अपनी समृद्धि में आनंदित होती और ईश्वर तथा अपने भाई बहनों की सेवा करती है। युवा कलीसिया का जन्म इस प्रकार हुआ था। जहां हम करुणा के कार्य को पाते हैं, जो विश्वास का सर्वोत्तम साक्ष्य है। संत पापा ने कहा कि अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में मुझे करुणा निवास के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मंगोलिया के स्थानीय कलीसिया में सेवा कार्य हेतु पहले स्थापित संस्था बनी। यह सभी ख्रिस्तियों के लिए निमंत्रण कार्ड की तरह रहा, जो हमारे हर एक समुदाय को करुणा का निवास होने का आह्वान करता है। एक खुश और स्वागत का स्थल, जहां हर व्यक्ति की पीड़ा बिना शर्म के ईश्वर की दया से भेंट कर सकता है, जो हमें उठाते और चंगाई प्रदान करते हैं। यह मंगोलियाई कलीसिया का साक्ष्य है, जहां प्रेरिताई कार्य में संलग्न विभिन्न देशों के प्रेरित लोगों के साथ एकता का अनुभव करते, खुशी में उनकी सेवा करते और पहले से व्याप्त वहां की सुंदरता की खोज करते हैं। संत पापा ने कहा, ये प्रेरित वहां धर्म परिवर्तन हेतु नहीं गए हैं, न ही सुसमाचार प्रचार हेतु, बल्कि वे मंगोलिया वासियों की तरह ही जीवन यापन करने की चाह रखते हैं। उनकी भाषा बोलते और वहां के मूल्यों के अनुसार सुसमाचार की घोषणा करते हैं। उन्होंने मंगोलियाई संस्कृति के अनुरूप अपने को ढाल लिया और उसके अनुरूप सुसमाचार की घोषणा की। मैं इस सुंदरता को कुछ लोगों से मिलते हुए, उनकी कहानियों को सुनते हुए, उनसे वार्ता करने और उनकी धार्मिकता की खोज हेतु जिज्ञासा में अनुभव किया। संत पापा ने कहा, इस संदर्भ में रविवार को संपन्न हुई एकता वर्धक मिलन के लिए मैं कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ। मंगोलिया में एक बृहद बौद्धिक परंपरा है। वहां रहने वाले निष्ठापूर्वक और मूल रूप से अपनी धार्मिकता को शांति में दूसरों की सेवा और अपने जुनून में महारत हासिल करने के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर विचार करें कि अच्छाई के कितने ही बीज हैं जो गुप्त रूप में विश्व की वाटिका में विकसित होते हैं, जबकि हम साधारणतः केवल पेड़ों के गिरने की आवाज को सुनते हैं। यह हम सबों के साथ भी होता है। कितना बुरा हुआ, वह पेड़ गिर गया, इसके द्वारा कितना विनाश हुआ। वही जंगल जहाँ रोज विकास होता है, उसे हम नहीं देखते हैं, क्योंकि यह चुपचाप बढ़ता है। चीजों की परख और अच्छाई को पहचानना हमारे लिए निर्णायक होता है। बहुधा यद्यपि हम लोगों को उस हद तक पहचानते और प्रशंसा करते हैं जहाँ वे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी निगाहें ऊपर अच्छाई की ओर बनाए रखें। केवल ऐसा करने के द्वारा अच्छी चीजों की पहचान के माध्यम हम सबों के लिए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। केवल दूसरों को महत्व देते हुए हम उन्हें प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Sono stato nel cuore dell'Asia e mi ha fatto bene.
मैं एशिया के केंद्र में था और यह मेरे लिए अच्छा रहा। इस विस्तृत महादेश से वार्ता में प्रवेश करना, इसके संदेशों को इकट्ठा करना, इसके ज्ञान से वाकिफ होना, चीजों को देखने के तरीके, समय और पृथ्वी का आलिंगन करना अपने में अच्छा रहा। मंगोलिया वासियों से मिलन मेरे लिए अच्छा रहा, जो अपनी जड़ों और परंपराओं को संजोकर रखते हैं, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते और पर्यावरण से एकता में बने रहते हैं। वे आसमान पर चिंतन करते और सृष्टि को सांसों की तरह अनुभव करते हैं। मंगोलिया के असीम और शांति में विस्तार के बारे में चिंतन करते हुए आइए हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने की आवश्यकता से प्रेरित हों। संत पापा ने कहा कि हम अपनी सीमाओं को विस्तृत करें, अपने नजरिए को बड़ा करें, छोटी चीजों के गुलाम ना रहें, जिससे हम दूसरों में अच्छाई देख सकें और अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें, क्योंकि ईश्वर हमें विस्तृत होने, हृदयों में हर एक के लिए समझदारी रखने और देशों के निकट रहने की चाह रखते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा का लघु विवरण समाप्त किया और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। प्रभु अहम स्थान की खोज नहीं करते बल्कि सरल हृदय की खोज करते हैं, जो उनकी चाह रखते और बिना किसी दिखावे दूसरों से ऊपर उठने की इच्छा किए बिना उन्हें प्यार करते हैं। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने आज के संदेश के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कही। पोप फ्रांसिस ने अक्टूबर माह को यूक्रेन में शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए समर्पित करने का आह्वान किया है। बुधवार को संत पापा ने यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक कलीसिया की धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकात की और ख्रिस्तों को आमंत्रित किया कि वे अक्टूबर माह को यूक्रेन में शांति और मेल मिलाप हेतु प्रार्थना करने के लिए समर्पित करें। मन परिवर्तन के लिए अधिक प्रार्थना की आवश्यकता, यूक्रेन में संघर्ष के अंत तथा यूक्रेन के धर्माध्यक्षों के आग्रह पर संत पापा फ्रांसिस ने अक्टूबर माह में प्रार्थना करने का निमंत्रण दिया है। जोहान्सबर्ग में एक इमारत में लगी भयंकर आग से पीड़ित लोगों के प्रति संत पापा फ्रांसिस ने अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आग के शिकार लोगों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे गहरे दुख के साथ पता चला कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के केंद्र में एक 5 मंजिले इमारत में आग लग गई, जिसमें कई बच्चों सहित 70 से अधिक लोग मारे गए। उन्होंने उपस्थित विश्वासियों और समारोह में ऑनलाइन भाग ले रहे लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वे इसके शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करें। संत पापा ने कहा, मैं परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और उन्हें तथा राहत कार्य में लगे सभी लोगों को अपनी विशेष आशीष प्रदान करता हूँ। 31 अगस्त को एक 5 मंजिली इमारत में आग लगने से कुल 73 लोगों की मौत हो गई है और 43 लोग घायल हैं। आग लगभग सुबह 1:30 बजे लगी। शहर के अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है कि आग लगने का संभावित कारण क्या हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग बिजली बंद होने पर लगी। एक गवाह ने बतलाया कि आग बिजली कटने के दौरान लगी थी और गोली चलने जैसी जोरदार आवाज हुई और उसके बाद बड़ा विस्फोट हुआ। जीवित बचे लोगों में से एक ने बतलाया कि कैसे वे खिड़की से बाहर कूद गए, लेकिन पहले अपने बच्चों को नीचे दूसरों के लिए फेंक दिया। पोप फ्रांसिस ने मंगलवार को वैटिकन के विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठे विभाग का आकस्मिक दौरा किया और कार्डिनल लुइस फ्रांचेस्को लदारियो को विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन वर्षों में उनकी सेवा के लिए अपना आभार प्रकट किया। पोप फ्रांसिस ने मंगोलिया की अपनी प्रेरित यात्रा से लौटने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद आस्था के सिद्धांत के लिए वैटिकन के विभाग का अचानक दौरा किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मात्यो ब्रूनी ने एक बयान में घोषणा की कि संत पापा ने मंगलवार सुबह 9 बजे के बाद वैटिकन डिकास्टी का दौरा किया, जहां उन्होंने कार्डिनल लुइस फ्रांचेस्को लदारिया से मुलाकात की और इन वर्षों के दौरान विभाग के अध्यक्ष के रूप में उनके सभी कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। जेसुइट कार्डिनल से मुलाकात करने के बाद संत पापा ने विभाग के अन्य अधिकारियों का भी अभिवादन किया। 2008 के जुलाई में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने स्पानी जेसुइट एवं ई शास्त्री को विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित धर्म संघ का सचिव नियुक्त किया था और उन्हें महाधर्मदर्श की उपाधि प्रदान की थी। पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल गेरहार्ड लुडविक मुल्लर के बाद धर्म संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 2018 में नियुक्त कार्डिनल लदारिया ने विभाग की सेवा 2017 से 2023 तक की है। अर्जेंटीना में लाप्लाजा के नामित कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस 79 वर्षीय कार्डिनल लदारिया के बाद विभाग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। वे मध्य सितंबर को अपना कार्य शुरू करेंगे। लातिनी अमेरिका के लिए परमधम पीठे आयोग एवं शिकागो के लोयला यूनिवर्सिटी की संयुक्त पहल पर एशियाई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक ऑनलाइन सभा का आयोजन किया गया है। सभा 26 सितंबर को दूसरी बेला होगी, जिसमें संत पापा फ्रांसिस दक्षिण एशिया के विद्यार्थियों से ऑनलाइन मिलेंगे। लातिनी अमेरिका के लिए परमधम पीठे आयोग और शिकागो के लोयला विश्वविद्यालय के प्रेरितिक अध्ययन संस्थान और प्रतिबद्ध वैश्विक एवं समुदाय के लिए कार्यालय के तत्वाधान में जारी पहल सेतु निर्माण का उद्देश्य है पूरे दक्षिण एशिया में सेतुओं का निर्माण करना। सभा के मुख्य पात्र इस बार पोप की सिनोडल कलीसिया के बुलावे का प्रत्युत्तर देने की चाह रखने वाले युवा विद्यार्थी हैं, जो दक्षिण एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। यह सभा 24 फरवरी और 1 नवंबर 2022 को दो सभाओं के बाद होने वाली है, जिन्हें क्रमशः अमेरिका और उप सहारा अफ्रीका के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। लाइव स्ट्रीम एक बार फिर यूट्यूब पर होगा और यह 3 भाषा में उपलब्ध होगा, अंग्रेजी, स्पानी और हिंदी। प्रतिभागी विद्यार्थी पाकिस्तान, भारत और नेपाल के विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों से हैं, जो कंप्यूटर विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र से लेकर रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र में पढ़ाई कर रहे हैं। मंगलवार 26 सितंबर 2023 को पोप फ्रांसिस के साथ आभासी बैठक के दौरान प्रत्येक समूह के प्रतिनिधि वक्ता के रूप में कार्य करेंगे। फिल्म निर्माण एवं शिक्षा के लिए जुनून ने पश्चिमी भारतीय शहर मुंबई में रहने वाले सिस्टर जोसफिना अल्बुकर को केवल 2 दिनों में मोबाइल फोन पर निर्मित अपनी आस्था से भरी 7 मिनट की फिक्शन फिल्म के माध्यम से आज के युवाओं को एक साथ लाने के लिए फिल्म उद्योग में जगह बनाने हेतु प्रेरित किया। सिस्टर जोसफिना जीसस एंड मेरी धम समाज की धम बहन है। शिक्षिका होने के साथ साथ उन्हें फिल्म बनाने का जुनून भी है। उनमें लेखन क्षमता का अभाव था, लेकिन वे सिनेमाटोग्राफी में सफल रहीं। कोविड-19 लॉकडाउन ने उन्हें फिल्म निर्माण और संपादन के लिए आवश्यक कुशल सीखने का अवसर प्रदान किया। अपनी यात्रा के दौरान वे आर्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों की जीवन शैली से प्रभावित हुए। उनके अनुभव ने उन्हें अंडर द बर्गर ट्री ए पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी शीर्षक की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए प्रेरित किया। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में सिस्टर जोसफिना ने कहा, मेरे धार्मिक समुदाय में युवा प्रेरिता के प्रभारी के रूप में मैंने देखा कि हमारे युवा अधिकांश समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। मेरा मानना था कि मैं केवल मीडिया और डिजिटल अध्ययन के साथ खुद को मजबूत करके ही उन तक पहुंच सकती हूं, और यही वह क्षण था जब मैंने फैसला किया कि मुझे एक पेशेवर फिल्म निर्माण पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की आवश्यकता है। फिल्म ने बांद्रा में सेंट पॉल संस्थान से सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किया। सिस्टर जोसफिना को यह पुरस्कार मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नशीरुद्दीन शाह से मिला है और यह फिल्म वर्तमान में ऑनलाइन ALP इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रास्ते पर है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।